तो आप सबके पास स्पेस है?
हाँ जी।
क्या अलग एक्सपीरियंस है? तो कितने समय तक आप बैठ सकते इस सिचुएशन में? मैं तो लंबा बिठाने के चक्कर में हूँ आपको। कल कहाँ बैठे थे? हाँ, ट्रेन में 6 आवर्स पता नहीं चला। नाइस। तो वैसे अभी भी ट्राई करते हैं। और जिसको अनइजी महसूस होगा मुझे उठा के वो जा सकता है बाहर। शर्माना नहीं है और आप फ्री हो किसी भी, बाकी सारे रूम खाली हैं। जिसको भी थोड़ा अनइजी हो रहा होगा मेरा रूम सामने ही है, वहां भी जा सकते हो। तो अभी हम श्रीरंग क्षेत्र के बारे में श्रवण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पांचाकल्पतरु वेश कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे रंग स्तोत्रम का उच्चारण करके। तो आप पास कर सकते हो एक दूसरे के पास पेपर्स।
पिलोज होगा मुझे
दीजिए,
बुक्स रखने के लिए।
कवर करो प्रॉपरली क्विकली। आप अब शेयर कर सकते हो। मध्वाचार्य के बारे में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था। तो उन्हीं संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं वादिराज महान, श्री वादिराज महान। तो मध्वाचार्य ने बहुत अधिक ट्रैवलिंग किया था। कई बार भारत का अलग अलग स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया। और मध्वाचार्य की खासियत थी कि उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को कृष्णा के शरणागत बनाया। और दूसरा, जो बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित स्कॉलरली जो पीपल हैं उनको उन्होंने डिवोटी बनाया। तो मध्वाचार्य ने ये दो प्रकार के लोगों पर फोकस किया। इन वन सेंस, सबके मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में कीजिए। तो मध्वाचार्य ने ये दो चीजों पर एक प्रकार से फोकस किया, दो प्रकार के ऑडियंस को टारगेट किया उन्होंने। लेकिन श्रीपद रामानुजाचार्य की एक विशेषता है और उनकी जो विशेषता श्रील प्रभुपाद से मिलती है। रामानुजाचार्य की खासियत क्या है कि उन्होंने सब प्रकार के लोगों को, चाहे वो नीच पतित और लो ग्रेड के क्यों ना हो, राजा महाराजाओं से लेकर स्कॉलरली पीपल से लेकर नीच शूद्र आदि लोगों को भी उन्होंने प्रीच किया। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद ने अल्फर्ड फोर्ड से लेकर जो बावरी स्ट्रीट में पशु के भांति जो गिरे हुए लोग हैं, जिनका अपने आप में कोई होश उनको नहीं है, पशु से भी बदतर जिनका जीवन था, उनको भी उन्होंने कृष्ण भावना दिया और महान भक्त बनाया। इस प्रकार से हम इवन ब्रह्म संप्रदाय में हैं मध्वाचार्य के, लेकिन हमारी जो अधिकतर शिक्षाएं आदि को हम यदि देखते हैं तो श्री संप्रदाय से बहुत अधिक मिलती जुलती है, अत्यधिक रूप से हम बहुत क्लोज अनुभव करते हैं। तो मध्वाचार्य के ये जो शिष्य थे या उनकी परंपरा के जो आचार्य थे वादिराज महान, उन्होंने ये रंग स्तोत्रम की रचना की है। मध्वाचार्य ने प्रीचिंग टूर में जाते थे, हम प्रीचिंग टूर में नहीं आए लेकिन हम एक अलग प्रकार की टूर में है। तो मध्वाचार्य प्रीचिंग टूर में निकलते थे कई बार भारत में, और उन्होंने उडुपी से शुरू करके बैंगलोर आदि होते हुए केरल आए थे, जहां हमने डिस्कस किया था उनके बारे में बीच में, यदि आपको किसी को याद हो। और फिर मध्वाचार्य केरला से होते हुए रामेश्वरम आदि मदुराई वहां से फिर श्रीरंगम आते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि मध्वाचार्य को जब प्यास लगी तो मध्वाचार्य ने एक विलेज में अपना जो डंडा है उसको जोर से ऐसे मारा, हाँ, तो जल निकल आया वहां से। फिर मध्वाचार्य बहुत समय तक यहाँ रहे। मध्वाचार्य का मठ भी है श्रीरंग क्षेत्र में, क्योंकि वैष्णव क्षेत्र है। तो ऐसे रंग क्षेत्र में मध्वाचार्य ने रंगनाथ स्वामी का बहुत अधिक गुणगान किया, और ये स्तोत्र है उनके परंपरा के आचार्य द्वारा लिखित है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, हम एक साथ दोहराएंगे, और एज ए पर्सनली भी आप आज शाम को भी डेटिस के सामने चांट कर सकते हो वहाँ, या कल भी आपको समय मिला तो टेंपल में भी चांट कर सकते हो। और ये बहुत मीनिंगफुल और वंडरफुल प्रेयर है भगवान रंगनाथ स्वामी के ग्लोरीज में। फिर रंग क्षेत्र, भगवान का नाम यहाँ क्या है, श्रीरंग। क्या है? श्रीरंग। श्री मीन्स श्रीमती लक्ष्मी देवी, और रंग मीन्स स्टेज। रंग मीन्स व्हाट? स्टेज। तो यहाँ लक्ष्मी देवी का स्टेज कौन है? रंगनाथ स्वामी है, जिनके ऊपर वो कई प्रकार की लीलाएं करती हैं। तो ऐसे रंगनाथ देव जो श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख विग्रह हैं, तो उनके प्रीति हेतु उनकी कृपा से दो दिन के लिए हम यहाँ हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे लीलाओं में कहाँ सबसे ज्यादा महाप्रभु ने निवास किया हो तो वो नवद्वीप में है 24 साल, और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहाँ ज्यादा रुके हैं तो वो जगन्नाथपुरी, और थर्ड नंबर में सबसे ज्यादा कहाँ रुके तो वो श्रीरंगम में है। तो कल मैं लॉर्ड चैतन्य इन श्रीरंगम अलग से एक लेक्चर मॉर्निंग में लूंगा, हाँ, कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, और फिर अलग अलग जो डिस्कशंस और महाप्रभु का भावावेश में आकर रंगनाथ का दर्शन और उनकी विशेष विशेष लीलाएं हैं, हाँ, जिनका वर्णन हम कल सुन सकते हैं। तो ये स्तोत्र है जो हम चांट करेंगे, और बहुत आपको बहुत फास्ट भी नहीं चांट करना है, नीडेड नहीं है कि हमें दौड़ना है इस स्तोत्र के साथ, कि हम धीरे धीरे एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए एक लयबद्ध स्वर में इसका गान करेंगे। श्री रंग स्तोत्रम की पद्माधिराजे गरुड़ाधिराजे विरिञ्च राजे सुरराज राजे त्रैलोक्य राजे खिल राज राजे श्रीरंग राजे रमता मनो में नीलाब्जवर्णे भुजपूर्ण कर्णे कर्णान्तनेत्रे कमलाकलत्रे श्रीमल्लरङ्गे जितमल्लरङ्गे श्रीरङ्गरङ्गे रमता मनो मे लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे ऋतपद्मवासे रविबिम्बवासे क्षीराब्दिवासे फणिभोगवासे श्रीरङ्गवासे रमता मनो मे कुबेरलोले जगदे कलिले मन्दारमालाङ्कितचारुपाले दैत्यान्तकाले अखिललोकमौले श्रीरङ्गलीले रमता मनो मे अमोघनिद्रे जगदेकनिद्रे विदेहनिद्रे च समुद्रनिद्रे श्रीयोगनिद्रे सुखयोगनिद्रे श्रीरङ्गनिद्रे रमता मनो मे आनन्दरूपे निजबोधरूपे ब्रह्मस्वरूपे क्षितिमूर्तिरूपे विचित्ररूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमता मनो मे भक्ताकृतार्भेर्सुररावणार्थे भक्तासमर्थे जगदेककीर्ते अनेकमूर्ते रमणीयमूर्ते श्रीरङ्गमूर्ते रमता मनो मे कंसप्रमाथे नरकप्रमाथे दुष्टप्रमाथे जगतां निधाने अनाथनाथे जगदेकनाथे श्रीरङ्गनाथे रमता मनो मे सचित्रशायी जगदेकशायी नन्दाकशायी कमलाङ्कशायी अम्बोदिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गशायी रमता मनो मे सकलदुरितहारी भूमिभारापहारी दशमुखकुलहारी दैत्यदर्पापहारी सुललितकृतचारी पारिजातापहारी त्रिभुवनभजहारी प्रियतां श्रीमुरारी रङ्गस्तोत्रमिदं पुण्यं प्रातःकाले पठेन्नरः कोटिजन्मार्जितं पापं स्मरणेन विनश्यति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सब सावधान हो जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में आए थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रीरंग क्षेत्र आइला कावेरी रतीर श्रीरंग देखिया प्रेमे हईला अस्थिर। चैतन्य महाप्रभु रंग क्षेत्र में आए थे और कावेरी के तीर पर यह स्थान है और रंगनाथ स्वामी को देखकर चैतन्य महाप्रभु अस्थिर हो गए। कैसे हो गए? तो हम उडुपी में थे तो वहां भी ऐसी दशा चैतन्य महाप्रभु की हुई थी। उडुपी थे कृष्ण देखी हैला विवल। उडुपी में जो कृष्ण को देखा तो महाप्रभु विवल हो गए थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ रंग क्षेत्र में आए थे और रंग क्षेत्र ये श्री संप्रदाय का प्रमुख स्थली है। जैसे गौड़िया वैष्णवों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ मायापुर, नवद्वीप और ब्रजभूमि, उसी प्रकार से जो श्री संप्रदाय के वैष्णवाज हैं उनके लिए चार स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं चतुर्मंडल या चतुर्मंडपम कहते हैं। एक है श्रीरंगम। तो ये चारों जो स्थान है, उन चारों स्थानों की चार विशेषताएं हैं। हर चार स्थानों में भगवान को चार प्रकार की सेवाओं से आप प्रसन्न कर सकते हो, उनको अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हो। जिस प्रकार से हम सुनते हैं चार धामों में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चार कार्य करने चाहिए। जगन्नाथपुरी में भगवत कृपा प्राप्त होती है जगन्नाथ का भात खाने से, प्रसाद खाने से। बद्रीनाथ में तपस्या, द्वारका में भगवान को ऑपुलेंस ऐश्वर्य अर्पित करने से, और रामेश्वरम में क्या करने से, स्नानम स्नान करने से। तो उसी प्रकार से ये जो श्री वैष्णवाज हैं, उनके लिए चार स्थान हैं। सबसे पहले है श्रीरंगम, कौन सा स्थान है,
श्रीरंगम।
दूसरा है तिरुपति, और तीसरा है कांचीपुरम, और चौथा है मेल्लकोटे। मेल्लकोटे जिसको तिरुनारायणपुरम भी कहते हैं, तिरुनारायणपुरम। ये मेल्लकोटे, ये जो चार स्थल हैं, इन चारों स्थानों में चार विशेषताएं हैं, और वो विग्रह चार चीजें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो श्रीरंगम को कहा जाता है भोग मंडल। भोग मंडल मीन्स या भोग मंडपम, तो भोग मंडल मीन्स जहां भगवान भोक्ता राम है। कौन से राम है यहाँ? हाँ, कृष्णा यहाँ सुप्रीम एंजॉयर है, और कुछ नहीं चाहते। रंगनाथ स्वामी को संतुष्ट करना बहुत टफ है, वैष्णव आचार्य कहते हैं, क्योंकि वो सदैव भोक्ता है। और यहाँ जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, हर एक चीज बनी है केवल रंगनाथ देव के भोग के लिए। हाँ, तो हम यहाँ सोचना चाहिए कि मैं वास्तव में भोक्ता नहीं हूं। तो रंग क्षेत्र इस चीज के लिए है, और आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा है तिरुपति। तिरु तिरु मीन्स, मैंने आपको कुछ तमिल ये सब जो शब्द सुनाए थे, हाँ, तिरु। अभी यहाँ देखा आपने, कई समय जगह में तायार यूज हुआ है ना, सन्निधि। हाँ, ये सब शब्द आपको मैंने, इम्पोर्टेंट शब्द आपको लर्न कराए थे। तो जो तिरुपति, हाँ, तिरु के जो पति हैं वो तिरुपति हैं। तो उस स्थान को कहते हैं पुष्प मंडल। क्या कहते हैं? पुष्प मंडल मीन्स जहाँ भगवान बालाजी को फ्लावर्स बहुत पसंद है। इसलिए एक वर्णन आता है, जब रामानुजाचार्य यहाँ श्रीरंगम में क्लास दे रहे थे, तो उस समय देखा कि बालाजी के जो विग्रह हैं, उनकी सेवा पूजा उचित रूप से नहीं हो रही है, और उनको फ्लावर्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर कष्टमय सेवा नहीं करना चाहता। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरे मन को अच्छी लगती है वो सेवा में करना चाहता हूँ, या ऐसी सेवा करना चाहता हूँ जो मुझे सब लोग सेवा करते हुए देखे। हाँ, फ्रंट लाइन सेवा, जैसे मैं जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कहा रथ के ऊपर चामर हिलाऊंगा भगवान को, टक टक टक, फिर बाद में दूसरे दिन कहूंगा आपने मुझे देखा नहीं, प्रभु जी माता जी आपने मुझे देखा नहीं, कहा था मैं रथ के ऊपर। हाँ, और वास्तव में उसका ध्यान जगन्नाथ के ऊपर नहीं होता, किसके ऊपर होता है, क्राउड के ऊपर। कौन कौन डिवोटी मुझे देख नहीं रहे अभी तक, कब से मैं चावल ले रहा हूँ। तो हम सेवा भी ऐसी करना चाहते हैं जिसके द्वारा हम वास्तव में कृष्णा को प्रसन्न नहीं करना चाहते, अपने भौतिक अहंकार और मन को और प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ रामानुजाचार्य ने वहां जब देखा कि बालाजी को फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनके हजारों सन्यासी शिष्य थे, उन्होंने कहा एक सेवा मेरे पास है, कौन जाएगा उस तिरुमला हिल के ऊपर, बहुत बड़ी हिल है। उस समय तो कोई रास्ते नहीं थे ठीक से, सोचो 900 साल पहले, कितने साल पहले, 800 साल भी पकड़ो, 800 साल सोच सकते हैं आप? अभी हम 50 साल पहले का सोचे तो भी बहुत कठिन होता है। उस समय जंगल था, वहाँ पशु पक्षी थे, बहुत ज्यादा पशु, हिंस्र पशु आदि थे, कोई नहीं जाना चाह रहा था। रामानुजाचार्य ने क्लास में ओपन किया, कौन करेगा ये सर्विस? तो बड़े बड़े दिग्गज सन्यासी डिवोटीज थे, कोई खड़ा नहीं हुआ। एक सिंपल, एक गृहस्थ भक्त खड़े हो गए, जिनका नाम था अनंत आचार्य। क्या नाम था? आप उनके बारे में सुनोगे और उन प्लेस को दर्शन करोगे तो कभी भी अनंत आचार्य के प्रति, अनंत आचार्य के प्रति आपके हृदय में प्रेम उमड़ आएगा। उस स्थान में भी मैं ले जाऊंगा आपको, तिरुपति हिल पर, जहां अनंत आचार्य अपनी पत्नी के साथ सेवा की है उन्होंने बालाजी की, और अमेजिंग सेवा की है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु, जिनको अनंत अलवर भी कहते हैं, दूसरा एक उनका नाम है। फिर रामानुजाचार्य ने उनको एक नया नाम भी दिया था। इस प्रकार से तिरुपति बालाजी को फ्लावर्स, जैसे गौर निताई को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, गौर निताई को ये अलंकार वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता। गौर निताई, हाँ, उनको कहते हैं अंबिका कालना में जो विग्रह है गौर निताई, वो उनके जो डिवोटी हैं उनको कहते हैं कि मुझे आप सजाओ हमेशा फ्लावर से। और गौर निताई को गार्लैंड्स अच्छे लगते हैं, कहाँ तक? उनके नीज तक। हाँ, तो गौर निताई बहुत आनंदित होते हैं जब उनको कोई फ्लावर से डेकोरेट करता है, ऑफर करता है। तो पुष्प मंडल, और तीसरा प्लेस है कांचीपुरम। कौन सा प्लेस है? हाँ, तो मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ सारी चीजें, ताकि आपको मैं तंग करूंगा 3-4 घंटे। तो कांचीपुरम, तो कांचीपुरम ये स्थान है त्याग मंडल। कौन सा स्थान है? त्याग मंडल, जहां वरदराज स्वामी निवास करते हैं। और वरदराज हर एक व्यक्ति से आकांक्षा करते हैं त्याग की भावना का, भगवान के लिए है, उनकी सेवा, उनके प्रीति, उनके प्रेम और उनकी प्रसन्नता के लिए एक व्यक्ति को सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। कल हमने एक ट्रेन में गीत गाया था, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, सर्वस्व तोमार, हे कृष्ण, आपके चरण कमलों में मैं अपना जो सर्वस्व है उसको अर्पित कर रहा हूं। और जो चौथा स्थान है जिसको कहते हैं मेल्लकोटे या तिरु नारायणपुरम, तो ये तिरु नारायणपुरम मेल्लकोटे ये विद्या मंडल है, विद्या मंडल जहां रामानुजाचार्य कंटिन्यूसली 12 साल रुके थे, और वहां उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। और श्री संप्रदाय के वैष्णवों का कहना है कि वहां कोई व्यक्ति रहता है और रामानुज द्वारा रचित जो श्री भाष्य है वेदांत सूत्र पर, उसके शुरुआत के कुछ श्लोकाई पढ़ता है तो भगवान को सरलता से समझ पाता है। उतना ही इनफ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए विद्या मंडलम में, उसको भगवान के भक्ति का जो ज्ञान है वो अर्जित होता है। तो इस प्रकार से हर संप्रदाय के अपने अपने विशेष प्लेसेस हैं जो भगवान के लीलाओं से या भगवान से संबंधित है। इवन प्रभुपाद भी कहा करते थे कि मेरा जो घर वृंदावन है और मेरा ऑफिस क्या है? मुंबई। और मेरा वर्शिपिंग प्लेस जहां मैं पूजा करता हूँ भगवान की, वो श्रीधाम मायापुर है। तो इस प्रकार से ये जो आचार्य है, ये जो सारे स्थान हमें प्रदान करते हैं, इन वैष्णव क्षेत्रों से हमें प्रेम हो जाए तो सरलता से हमें वैकुंठ जाने की जो डिजायर है वो हमारे हृदय में जागृत होगी। क्यों ये वैष्णव क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं और उनको फेमस किया जाता है? क्योंकि जो जीव वैकुंठ जाने की जो डिजायर है, ऐसे भगवान के स्थलों में आकर अपने हृदय में उजागर करता है, जागृत करता है। और ये भी एक कारण है इन सब प्लेसेस में विजिट करना, बारंबार धामों में जाना, वृंदावन आदि जाना, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी भगवान के धाम जाने की डिजायर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, हम जाना चाहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये श्री संप्रदाय के अलग अलग जो स्थान है जहाँ ये विशेष प्रकार की जो सेवाएं हैं उनको भगवान स्वीकार करते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य भिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि जो भगवत भक्ति है शुद्ध भक्ति उत्तमा भक्ति वो ये है कि सारी अभिलाषाओं से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो वो उत्तमा भक्ति का ये भी एक स्थान है रंग क्षेत्र, जहां वैष्णवाज किसी और चीज की आकांक्षा नहीं करते, यहाँ केवल एक ही आकांक्षा करते हैं किस प्रकार से भगवान रंगनाथ को प्रसन्न किया जाए अपनी सेवाओं के द्वारा, और कोई उनकी डिजायर नहीं है। तो ऐसे स्त्री संप्रदाय में वैष्णव में यहाँ वैष्णव सदाचार श्री वैष्णवाज में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और विशेष रूप से भगवान का जो पूजा विधान है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अधिक स्ट्रिक्ट है और बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। और तीसरा कि यहाँ श्री संप्रदाय में वैष्णव सेवा पर बहुत जोर है, भक्त जन सेवा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग चैतन्य महाप्रभु ने वो स्थापित अपना जो सिद्धांत है अचिंत भेदा भेद वो जब प्रकट किया, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण किया था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के संप्रदाय से क्या ग्रहण किया था, मैंने उस दिन बताया था आपको, कृष्ण मूर्ति सेवन, कृष्ण के विग्रहों की सेवा करना, और दूसरा केवल अद्वैत निरासन। केवल अद्वैत निरासन मीन्स जो अद्वैत फिलॉसफी है शंकराचार्य की उसका खंडन करना। इवन प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी आता है निर्विशेष शून्यवादी, उसका खंडन करना या उससे सबको तारण करना। और जब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ रामानुजाचार्य से, रामानुजाचार्य भी महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर यहाँ सबसे ज्यादा रहे, 4 महीने के लिए कंटिन्यूअसली बहाना बनाकर चातुर्मास का यहाँ उन्होंने निवास किया वेंकट भट्ट के घर में। किसके घर में, वेंकट भट्ट के घर में, जहाँ उनके पुत्र को भक्त बना दिया जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ऐसे श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने 2 शिक्षाएं ली और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इवन हमारे गौड़िया संप्रदाय में इसको अधिकतर रूप से देखा जाता है इसका प्रचलन। एक है अनन्य भक्ति, अनलॉयड डिवोशनल सर्विस, अनन्य भक्ति पर जोर है गौड़ियास का, और ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजा के शिक्षाओं से लिया है। और दूसरा है भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना। हजारों ऐसे उदाहरण है श्री संप्रदाय में कि वहां के भक्तों का कितना डेडिकेशन और समर्पण है भक्तों की सेवा करने में, और कितना फेथ है। जैसे उदाहरण आता है श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, रामानुजाचार्य एक बार अपने सारे शिष्यों के साथ जब ट्रैवल कर रहे थे एक स्थान तिरुपति की ओर निकले थे, तो बीच में और उनके साथ काफी सारे शिष्य थे, तो ऐसे निकलते निकलते रामानुजाचार्य ने एक स्थान में उनको पहुंचना था, और जहां उन्होंने सोचा कि वहां हम भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे एक टाउन में। तो उस टाउन में जब ये पूरा पार्टी पहुंचा तो रामानुजाचार्य को लगा कि मुझे कुछ 2 मेरे शिष्यों को आगे भेजना होगा एडवांस पार्टी, हाँ, जो जाकर पहले से थोड़ा प्रसादम का व्यवस्था करेंगे, और वो भी उनके एक शिष्य के घर में जो बहुत धनवान शिष्य था, रिच डिसाइपल था। ये दोनों डिवोटीज गए वहां, रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे ब्रह्मचारी वो गए, और उस धनवान व्यक्ति के घर पहुंचते उन्होंने कहा कि श्रीपद रामानुजाचार्य आने वाले हैं, आप उनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए प्रसादम आदि। तो उस धनवान शिष्य ने जब सुना वो आनंदित हो गया, और इतना अधिक आनंदित हो गया और कई सारी व्यवस्थाओं में लग गया कि जो आए हुए भक्त थे रामानुजाचार्य के, उनको पानी देने के लिए भी भूल गए और वो बिजी हो गया। और ये बेचारे भक्तों को, दोनों को वैसे ही वापस रामानुजाचार्य के पास आना पड़ा। और रामानुजाचार्य ने सबसे पहले पूछा, मुझे बताओ उसने आपके साथ, आप दोनों के साथ कैसे व्यवहार किया। तो उन दोनों ने कहा, हम तो आपका मैसेज तो दे दिया, ना हमें बैठने के लिए स्थान पूछा, ना जल ना प्रसाद आदि, हाँ हम ऐसे खड़े खड़े वापस आ गए। रामानुजाचार्य ने कहा, मैं वहां विजिट नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरे डिवोटीज को सही रूप से ट्रीट नहीं कर रहा है तो मैं कैसे अपेक्षा करूं कि उसका मेरे प्रति उतना ही प्रकार का भाव या फेथ या सरेंडर या सेवा का भाव है। तो रामानुजाचार्य ने अपने उन दोनों शिष्यों को कहा कि मेरे एक गरीब डिसाइपल है, उनके घर जाओ, उनका नाम वरद आचार्य ऐसे था। तो फिर वो गरीब ब्राह्मण पति पत्नी निवास कर रहे थे, रामानुजाचार्य के दो शिष्य गए और उनको कहा नहीं। फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि हम दूसरी जगह जाएंगे। तो ये रामानुजाचार्य अपने उस शिष्य के घर पहुंच गए तो उनका जो शिष्य है, पति पत्नी दोनों डिसाइपल थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब एक टाइम खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। और ये पूरा पार्टी वहां पहुंचे, सोचो 30-40 लोग पहुंच गए होंगे। और वो जो माता जी उस समय स्नान कर रही थी, या उनके पास क्लोथ भी नहीं थे पहनने के लिए, रामानुजाचार्य ने जैसे आवाज दिया, उनके पति तो चले गए थे कहां भिक्षा मांगने के लिए, ब्राह्मण थे। तो रामानुजाचार्य ने आवाज दिया, उनके शिष्य का नाम उच्चारण किया, लेकिन वो घर में नहीं थे। तो जो माता जी थी उन्होंने आवाज अंदर से दिया, तो रामानुजाचार्य समझ गए कि दरवाजा नहीं ओपन कर रही है। रामानुजाचार्य ने अपना ऊपरी वस्त्र जो होता है ना, उत्तरिया, वो अंदर फेंका और उन्होंने पहन लिया और फिर अपने गुरु का स्वागत करने के लिए आ गई। और फिर जब रामानुजाचार्य उन सारे शिष्यों को बिठाया तो उन्होंने सोचा कैसे उनकी सेवा करूं। तो लेकिन बहुत फेथ था रामानुजा और उनके भक्तों की सेवा के प्रति। ये तो श्री संप्रदाय में कहते हैं कि हाईएस्ट वो है, उदाहरण है किस प्रकार से सरेंडर की भावना थी। तो वो स्त्री ने सोचा कि कैसे मैं इनको भोजन आदि खिलाऊं। तो उन्होंने सोचा, एक जो धनी व्यक्ति था उनके टाउन में, उनके वहां से वो कुछ ग्रेन्स वगैरह लाने के लिए गई। और वो व्यक्ति हमेशा सोचता था, इनका नाम लक्ष्मी था शायद, वो सोचता था कि ये लक्ष्मी के साथ मैं संग करूं, और जिसके कारण उनको कहता था कि आपको मैं जितना धन सुविधाएं हैं वो प्रदान करना चाहता, दे दूंगा, हाँ लेकिन आप मेरी हो जाओ। तो ये लक्ष्मी, ये जो उनके डिसाइपल है, वो उनके पास जाते, उस व्यक्ति के पास। तब तक रामानुजाचार्य और उनके सारे शिष्य घर में थे, उनके पास जाते कहते कि मुझे आप ग्रेन्स वगैरह जो भी नीडेड वस्तुएं हैं वो सारे दे दो। तो वो दे देता है और ये आती है, कुकिंग आदि करती है और उनको सर्व करना शुरू करती है। उसी समय रामानुजाचार्य उनके जो शिष्य हैं वो आके पहुंचते हैं, जो घर के ओनर हैं ब्राह्मण, और वो देखते कि अरे इतना सारी चीजें कैसे आ गई हमारे घर में और ये सब प्रसाद पा रहे हैं। तो उनकी पत्नी वो बताती है अपने पति को रीजन कहां से और मैंने लाया हूं, और इस प्रकार का एविल जो नेचर है, भावना है उस धनी व्यक्ति की है। तो फिर रामानुजाचार्य प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो दोनों पति पत्नी रामानुजाचार्य के पास ये जो स्ट्रगल है वो रिवील करते हैं। तो रामानुजाचार्य अपना महाप्रसाद देते हैं उनको, जो रामानुजाचार्य ने खाया हुआ उच्छिष्ट है, और उनको कहते हैं कि आप जाकर क्या करो, उसको दे दो, उस धनी व्यक्ति के पास जाओ ये उच्छिष्ट प्रसाद लेकर। तो वहां पहुंचती है और वो अकेली पहुंचती है उस धनी व्यक्ति के पास और उसको उच्छिष्ट प्रसाद प्रदान करती है। वो खाने मात्र से इतना शुद्ध हो जाता है कि उसके चरणों में गिर जाता है और फिर वो कहता है कि मैं आपके आध्यात्मिक गुरु को देखना चाहता हूं। उनको सर्व करना चाहता हूँ, सरेंडर होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से श्री वैष्णवाज में ये कहा देखा गया है कि वहाँ जो वैष्णवों की सेवा करने की सर्वोत्कृष्ट धारणा है, और जिसके द्वारा वास्तव में वो जो पति पत्नी हैं आज भी बहुत अधिक ग्लोरियस हैं उनकी इस वैष्णव सेवा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय से दो चीजें ली थी। कौन सी दो चीजें हैं? अनन्य भक्ति, अनलॉयड डिवोशनल सर्विस। हाँ, जो हम रूप गोस्वामी ने अनन्य भक्ति की बात की है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो महाप्रभु ने उनको इलाहाबाद में शिक्षा दी, और दूसरा है भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा। और जो तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य है विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने दो शिक्षाएं ली। एक है तदीय सर्वस्व भाव, मतलब पूर्ण रूप से भगवान पर ही निर्भर रहना, हाँ किसी और पर निर्भर नहीं होना, हाँ कि कोई धनी व्यक्ति के मैं ऊपर में निर्भर हूँ कि वो मेरा उपजीविका का साधन बनेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, ये नहीं। भक्त किस पर निर्भर रहता है? उसके हर नीड्स के लिए कृष्ण पर। और दूसरा है, उसी का दूसरा पार्ट है राग मार्ग, मतलब भगवान के प्रति राग रागानुगा भावना में भगवान की सेवा करना। और जो चौथा संप्रदाय है निम्बार्क, तदीय सर्वस्व भाव, टेक्निकल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ये चारों भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी बुक नवदीप धाम महात्म्य उसमें दिया है ये चारों चीजें। तदीय सर्वस्व भाव मतलब पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सरेंडर, या मतलब डिपेंड भगवान के ऊपर। और जो निम्बार्क संप्रदाय है उसका उससे चैतन्य महाप्रभु ने दो शिक्षाएं ली थी। एक था एकांत राधिका आश्रय, राधा रानी के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, और उसी की दूसरी चीज थी गोपी भाव। ये निम्बार्क संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें अपने शिक्षाओं में स्वीकार की हैं। तो हो गया आपका। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्री संप्रदाय से ये दो प्रमुख शिक्षाएं लेते हैं, और इवन श्रील प्रभुपाद इन दो शिक्षाओं को बहुत जोर देते हैं अपने आंदोलन में, भक्तों की सेवा, टेकिंग केयर ऑफ डिवोटीज या डिवोटीज को सर्व करना, और दूसरा है अनलॉय डिवोशनल सर्विस, आहेतु की जो भक्तों की सेवा है वो। तो रंगनाथ स्वामी जिनका नेचर है भोग विलास करना, मीन्स भोग स्वीकार करना, अल्टीमेट एंजॉयर है। तो जैसे हम उडुपी में थे तो वहां कृष्ण इस रूप में आनंद एंजॉय करते हैं, एक किड के रूप में, मतलब एक बालक के रूप में उडुपी कृष्णा सारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। बल्कि एक बच्चे को संतुष्ट करना बहुत इजी है। इजी है कि नहीं इजी? आपको सबको अनुभव होगा बच्चों को संतुष्ट करना बहुत इजी है, लेकिन रंगनाथ स्वामी को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि रंगनाथ स्वामी का नेचर कैसा है, इनके श्री वैष्णवाज कहते हैं कि जैसे एक लड़की हो जिसकी आयु 15 से लेके 18 तक है अराउंड, हाँ तो वो उसको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, वो बहुत चंचल होती है, और उसकी नीड्स भी बहुत होती हैं, और क्या क्या डिमांड करेगी, क्या क्या मांगेंगे, उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो उसी प्रकार से रंगनाथ स्वामी है। तो रंगनाथ देव को, भगवान रंगनाथ की सेवा में ऐसी ऐसी वस्तुएं यूज होती हैं, वो कभी भी कुछ भी डिमांड करते हैं। इवन भगवान रंगनाथ लिपस्टिक भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? था मैं पढ़ पढ़ के जो कई चीज पढ़ रहा था रारा उनके बारे में तो बहुत हंस रहा था कि ये क्या। इसलिए वो कहते हैं युवती का उदाहरण देते हैं हाँ कि न्यूली ब्लॉसमिंग जो गर्ल है उसको संतुष्ट करना बहुत कठिन है, उसी प्रकार से रंगनाथ देव को भी हाँ संतुष्ट करना अत्यंत कठिन है। तो ऐसे रंगनाथ स्वामी यहाँ निवास करते हैं और वास्तव में वो रियलाइज करके छोड़ते हैं कि आप भोक्ता नहीं हो। हाँ प्रभुपाद हमेशा इस पर जोर देते थे आप रियल एंजॉयर नहीं हो। हाँ तो जब हम भगवान को आनंद देते हैं तो उसके आनंद में ही हम आनंद अनुभव करते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये जो श्रीरंग क्षेत्र है ये इस भौतिक जगत का इस स्थान में ये भूलोक का वैकुंठ है। हाँ तिरुमंगई अलवर हाँ जिनके बारे में हमने सुना है, तिरुमंगई अलवर के बारे में नहीं सुना, वो 12वें अलवर है। तो देखेंगे हम कल कुछ अलवरों का चर्चा करेंगे। हमने कितने अलवरों के बारे में सुना है? 6। कितने बचे हैं? 6। तो 6 अलवरों का चर्चा करेंगे हम बाद में। तो तिरुमंगई अलवर कहते हैं कि सारे जो दिव्य देशम है, कितने दिव्य देशम है? 108। तो सारे जो दिव्य देशम है वो गार्डन की तरह है। किसकी तरह है? गार्डन की तरह है। और ये श्रीरंगम है, ये गार्डन के बीच में क्या है? महल है। ये इम्पोर्टेंट प्लेस है। 108 दिव्य देशों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो श्रेष्ठ है वो ये श्रीरंग क्षेत्र है। और ऐसा रंग क्षेत्र हाँ ये भगवान का वैकुंठ धाम ही है। इसलिए ये जो टेम्पल है इसकी जो रचना है बिल्कुल वैकुंठ धाम की तरह है। 7 प्रकार कहते हैं उसको। प्रकार मीन्स वॉल्स, 7 वॉल है, 12 टावर्स है और बहुत सारी डिटेलिंग है जो वैकुंठ लोक में है। तो वैकुंठ लोक जब ब्रह्मा ने इस टेम्पल के बारे में देखा या सुना तो उनको लगा कि मैं तो इस वैकुंठ जगत के जो छोटा सा इतना सा पार्टिकल है उसका केयर कर रहा हूँ। भौतिक जगत वैकुंठ जगत का डस्टबिन है। क्या है? हाँ वैकुंठ जगत का डस्टबिन क्या है? मटेरियल वर्ल्ड। तो ब्रह्मा जब देखते हैं कि ये जो वैकुंठ जगत है उसके कोने में इतना छोटा सा एक पार्टिकल है भौतिक जगत, उसका मैं क्या हूँ? उसका टेक केयर कर रहा हूँ, उसको मैनेज कर रहा हूँ। तो जो ब्रह्मा ऐसा सोच रहे हैं, हम अपने अपने एरिया में छोटे छोटे चीजों के बॉस होते हैं, कुछ कार्य करते तो हम कितना गर्व अनुभव करते हैं। हाँ इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि मैं वास्तव में नगण्य हूँ। हाँ तो इस स्थान में श्रीरंग क्षेत्र में भगवान को एक नाम दिया गया है जिनका नाम है पेरिय पेरुमल। क्या नाम है? माता जी पेरिय का मतलब क्या है? बेग। हाँ सही है, पेरिय पेरुमल। तो जो भी कुछ शब्द होंगे हम माता जी से पूछेंगे, जहां भी डाउट होगा हमें। हाँ तो इसलिए है जो यहाँ आसपास के जो किसान होते हैं जब वो अपनी फसल को निकालते हैं और फिर उसको काउंट करते हैं तो जो पहला काउंटिंग का क्या कहते हैं उसको? नाप। नहीं, जैसे किसी चीज से आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 हाँ मेजर, जो पहला मेजर का कैसे कहेंगे, पहले जो खेप है, सोचो केजी में कुछ काउंट कर रहा है तो पहला जो केजी है वो काउंट नहीं करता, उसके लिए वो बोलता है तिरु अरंग पेरिय कोयल। क्या कहता है? तिरु अरंग पेरिय कोयल। तो वो वास्तव में इनके लिए है। किसके लिए? वो पहला रंगनाथ के लिए, क्योंकि सारे जो किसान है वो जानते हैं कि यहाँ रंगनाथ ही क्या है? भोक्ता है। उन्हीं के लिए ये फर्स्ट नाप है। तो ऐसे रंगनाथ स्वामी का इस क्षेत्र का वर्णन ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण और वे पद्म पुराण आदि में बहुत अधिक विशेष रूप से दिया है और वेदों में भी रंगनाथ स्वामी का वर्णन है। इसलिए भगवान का नाम एक नाम दिया है, उनका नाम वेद स्वरूपी। भगवान का नाम क्या है यहाँ? वेद स्वरूपी। तो ऐसे रंगनाथ क्षेत्र में ये जो सात वॉल्स हैं, पहले वैसे इन सात जो दीवारें हैं वो प्रतिनिधित्व करती हैं सात लोकों का, भूर भुवर स्वहर महर लोक तपलोक जनलोक सत्यलोक, इस प्रकार से सात लोकों का वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बाद में इन सातों दीवारों का नाम जो जो बहुत फेमस सेवन डिवोटीज थे रंगनाथ के, उनके नाम से इन सातों जो दीवारें हैं उनका नामकरण किया गया है। तो ऐसे रंग क्षेत्र ये एक द्वीप है जो दो नदियों के बीच में है। कितने नदियों के बीच में है? एक है कावेरी और दूसरा है कोलेरुन। कौन सी नदी? कोलेरुन। तो ऐसे कावेरी और कोलेरुन ये जो दो नदियां हैं, ऐसा वर्णन आता है कि ये नदियां वास्तव में रंगनाथ क्षेत्र पर एक माला के रूप में है। जिस प्रकार से माला पहनाई जाती है राउंड फॉर्म में, उसी प्रकार से ये दो नदियां भगवान की सेवा विशेष रूप से करते हैं। तो हर जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र होते हैं उनको तीन चीजों में बांटा गया है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? एक है, तीन चीजों के अनुसार उनको कैटेगराइज किया गया है। एक है दिव्य देश, एक है स्थल विशेष, और एक है मूर्ति विशेष, और एक है तीर्थ विशेष। हाँ, जो आध्यात्मिक टाउन्स हैं या धाम हैं, तीर्थ हैं, उनको तीन स्थानों में बांटा है। एक है स्थल विशेष, मूर्ति विशेष, तीर्थ विशेष। तो कोई भी ऐसा दिव्य देशम नहीं है कि जहां तीनों ये एक साथ हो, लेकिन रंग क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ तीनों ही बहुत पावरफुल है और तीनों एक साथ हैं। स्थल विशेष मतलब ये वैकुंठ से अभिन्न है, मूर्ति विशेष ये रंगनाथ स्वामी इस क्रिएशन के फर्स्ट डीटी हैं। कौन से डीटी हैं? क्रिएशन के पहले विग्रह। जितने भी विग्रह हैं वो रंगनाथ के विग्रह का ही वास्तव में एक्सपेंशन है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जितने भी डीटीज आ रहे हैं अभी या आएंगे इन फ्यूचर आल्सो। और तीर्थ विशेष, यहाँ विशेष तीर्थ है जिसका नाम है चंद्र पुष्करणी। सुबह हमने दर्शन किया था। और ऐसे चंद्र पुष्करणी के चारों ओर आठ और भी तीर्थ है, मीन्स जलाशय है। अभी तो वो सारे लुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे जो आध्यात्मिक स्थान होते हैं या टेम्पल्स होते हैं उनको और चार प्रकारों में कैटेगराइज्ड किया जाता है, उसके डीटी इंस्टॉलेशन के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, वो डीटीज किसने इंस्टॉल किए है उसके अनुसार हर स्पिरिचुअल प्लेस को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है स्वयं व्यक्त क्षेत्र। फर्स्ट क्या है? स्वयं व्यक्त क्षेत्र। थोड़ा सा स्टोरीज आपको थोड़ा बाद में सुनाऊंगा, फर्स्ट टाइम्स। हाँ, स्वयं व्यक्त क्षेत्र मतलब वो स्थान सेल्फ मैनिफेस्ट है, स्वयं मैनिफेस्ट हुआ है। जैसे ब्रज भूमि वृंदावन है, जगन्नाथपुरी, जैसे हम हमारे संप्रदाय के अनुसार देखते हैं, तो उसी प्रकार से हाँ ये जो स्थान है रंग क्षेत्र है। और दूसरा है मतलब यहाँ के डेटीज को किसी ने इंस्टॉल नहीं किया, उस स्थान को कहा जाता है स्वयं व्यक्त क्षेत्र। और दूसरा है दिव्य क्षेत्रम। दिव्य क्षेत्र मीन्स जहां डेमिगॉड्स डेटीज को इंस्टॉल करते हैं। हाँ, जैसे ऐसे कई स्थान हैं, इवन साउथ इंडिया में या वृंदावन आदि में भी हैं। और तीसरा है सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र मीन्स जो सिद्ध पुरुष हैं, सेजेस हैं, सेंट्स हैं, वो लोग डीटीज को इंस्टॉल करते हैं, जो वैष्णव संत हैं, जैसे प्रभुपाद टेम्पल्स हैं, वो सब सिद्ध क्षेत्र हैं एक प्रकार से। या जहां जहां भगवान के भक्तों ने, सिद्ध महात्माओं ने, मुनिगणों ने, ऋषियों ने डीटीज को इंस्टॉल किया, वो सारे स्थान सिद्ध क्षेत्र के रूप में एक प्रकार से जाने जाते हैं। और चौथा प्रकार है मानुष क्षेत्र। मानुष क्षेत्र मतलब ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा डीटीज जहां इंस्टॉल हुए हैं। तो श्री वैष्णव के अनुसार
आर्ट स्वयं व्यक्त क्षेत्र है कि जो स्वयं सेल्फ मैनिफेस्टेड है। एक है सबसे पहले है श्रीरंगम, कौन सा स्थान? दूसरा है श्री मुष्णम, कौन सा है? श्री मुष्णम, जहाँ वराहदेव है, जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु गए थे, श्री मुष्णम। ये सब चैतन्य चरितामृत में आते हैं, ये सारे प्लेसेस सब पढ़ते हैं तो। और तीसरा है तिरुवेंगदम, कौन सा है? तिरुवेंगदम। चौथा है शालग्रामम, पांचवा है नैमिषारण्यम, कौन सा है? नैमिषारण्यम स्वयं मैनिफेस्ट हुआ है, भगवान स्वयं अपने आप को एक फॉरेस्ट के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, जब ब्रह्मा भगवान के रूप को देखना चाहते हैं, ये वरदराज के लीला से संबंधित है, कांचीपुरम में हम वो डिस्कस करेंगे। पांचवा है नैमिषारण्य, छठा है वनमालई, वनमालई, सातवा है पुष्करम और आठवा है बद्रिकाश्रम, कौन सा है? तो इसमें से दो दिव्य देशम नहीं है, मतलब बाकी जो छह है उसमें ये अलवर गए और वहां भगवान की स्तुति की। ये दो दिव्य देशम कौन कौन से नहीं है? श्री मुष्णम और पुष्कर, ये दो स्थान ऐसे हैं जहां ये अलवर नहीं गए और भगवान की स्तुति नहीं की। हाँ, तो ऐसे जो स्वयं व्यक्त क्षेत्र होते हैं वहां स्वयं भगवान अपने मर्जी के अनुसार प्रकट होते हैं, अपने स्विच विल के अनुसार वहां निवास करते हैं। हाँ, और कोई उनको रिक्वेस्ट या फोर्स नहीं कर सकता, उस स्थान में वो किसी के रिक्वेस्ट के अनुसार प्रकट नहीं होते, स्वयं वो आते हैं। तो ऐसे स्वयं व्यक्त क्षेत्र में जो श्रीरंगम है वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो ऐसा ये जो टेम्पल है ये वास्तव में भारत का सबसे बड़ा टेम्पल है, 156 एकड़ में है। कितने एकड़ में? 156 एकड़ में ये टेम्पल है। इवन रामायण में भी इस टेम्पल का वर्णन आता है वाल्मीकि मुनि के द्वारा। तो ये ऐसा स्थान है श्रीरंग क्षेत्र जहां कई सारे जो आचार्य हैं वो अवतरित होते हैं और भगवान की अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं। तो ऐसे रंगनाथ स्वामी, इनका जो विशेष विग्रह है जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, जहां नारद मुनि को शिवजी भगवान रंगनाथ के बारे में वर्णन करते हैं, इनके विग्रह के बारे में, ये कैसे अवतरित हुए वगैरह वगैरह। तो नारद मुनि के अंदर रंगनाथ के बारे में सुनने की बहुत अधिक लालसा थी, और वास्तव में शिव जी कहते हैं कि ये जो श्रीरंगम है यहाँ लक्ष्मी देवी का कृपा बहुत अधिक है इस क्षेत्र पर, और जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र का विजिट करता है, रंगनाथ देव का दर्शन करता है, उस व्यक्ति पर लक्ष्मी की भी कृपा उतनी ही मात्रा में होती है, और दूसरी चीज वो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के सागर से सरलता से प्राप्त हो पार हो सकता है। तो ऐसे जो रंगनाथ देव हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा से जो ब्रह्मा हैं सबसे पहले बहुत अधिक तपस्या करते हैं 1000 साल के लिए। कितने साल के लिए? इवन ऐसे वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ तब उन्होंने बहुत अधिक तपस्या आदि की, और फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और उस सेवा के लिए आप प्रकट हो जाइए। तो भगवान क्षीर सागर से प्रकट होते हैं इस विग्रह के रूप में। कौन से विग्रह के रूप में? रंगनाथ स्वामी के विग्रह के रूप में। और अकेले नहीं, दोनों विग्रह भगवान मतलब ब्रह्मा की सेवा के लिए प्रकट होते हैं, और अल्टर के साथ जिसको विमानम कहते हैं। हाँ, माता जी को पता होगा विमानम। आप जब टेम्पल में जाते हो तो जो मेन गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो शेप होता है, यहाँ गोल्डन शेप है जिसमें भगवान का सुंदर मुख कमल है, आप शाम को या कल हम देख सकते हैं, जो सुवर्ण विमान है। कौन सा विमान है? सुवर्ण विमान, सुवर्ण विमान मीन्स एक ऐसा प्लेस जिसके अंदर भगवान की ड्यूटीज रहती है। हाँ, सोचो हमारे शब्दों में अल्टर जिसे कहते हैं, तो ऐसे सुवर्ण विमान में भगवान क्षीर सागर से प्रकट होते हैं और ये सुवर्ण विमान गरुड़ जी अपने कंधे में लेकर उठा के ऊपर आ गए थे उस क्षीर सागर से। अभी हमने यहाँ सुबह गरुड़ जी का दर्शन किया था, तो वो गरुड़ जी एक विशेष मुद्रा में है, ऐसे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और वो किसको देख रहे हैं निरंतर? रंगनाथ स्वामी को। कई बार कोई सोच सकता है कि इतने दूर कैसे गरुड़ जी को रख दिया। हाँ, लेकिन एक बार रंगनाथ स्वामी को कुछ करना था रंगनाथ देव को, तो उन्होंने गरुड़ जी को कहा इसी स्पॉट में बैठे रहना, तब से वो उधर ही है, दूर ही है उनके मंदिर से देखा जाए। जब मुझे इमरजेंसी होगी तब मैं आपको और अंदर बुला लूंगा। तो वहां गरुड़ जी निश्चिंत होकर और ऐसी ऊपर आंखें करके किसको देख रहे दूर से? रंगनाथ देव का, कि क्या मुझे आदेश देंगे कि ताकि मैं तुरंत जम मारू, उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाऊं। तो ऐसे जो भगवान रंगनाथ देव के विग्रह अनंत शेष पर लेटे हुए हैं और जिनके जब ये विग्रह प्रकट हो गए हैं वहां से क्षीर सागर से, तो उसके साथ भगवान के अनेक अनेक पार्षद भी उनके साथ प्रकट हो गए, इंद्र आदि देवतागण भी वहां आ गए। तो ऐसे विग्रह को ब्रह्मा जी लाते हैं और अपने जो सत्य लोक है वहां स्थापित करते हैं। कहां स्थापित करते हैं? सत्य लोक में। और उस विग्रह के साथ भगवान के वैकुंठ के जो सेनापति हैं, जिनका जिनको कहा जाता है विश्वक्सेन, क्या कहते हैं? विश्वक्सेन। इसी संप्रदाय में विश्वक्सेन का बहुत महात्म्य है। हाँ, हम उनका विग्रह का भी दर्शन करेंगे, रंगनाथ स्वामी के पीछे ही उनका विशेष टेम्पल है। तो जब ऐसे विग्रह प्रकट हो गए हैं तो ब्रह्मा दिन रात ऐसे रंगनाथ देव की पूजा अर्चना सेवा प्रार्थना स्तुति आदि करने लगे हैं। और फिर उन्होंने आगे चलकर दक्ष प्रजापति को ये सेवा दी। किसको दी? दक्ष प्रजापति को। इस संसार में कैसे आए, भूलोक में ये विग्रह की सेवा यहाँ कैसे शुरू हो गई? सबसे पहले तो ब्रह्मा ने पूजन किया, फिर उसके बाद उन्होंने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। और फिर उन्होंने मनु को दिया। हाँ, मनु ने उनकी सेवा को स्वीकार किया। और फिर इक्ष्वाकु को लगा कि नहीं, इनको इस विग्रह को अपने विमानम के साथ भूलोक में होना चाहिए और सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, इनके दर्शन पूजन आदि का। तो इक्ष्वाकु ने बहुत अधिक तपस्या की और उनके साथ भगवान यहाँ आना चाह रहे थे इस पृथ्वी लोक में। तो ब्रह्मा बहुत दुखी हो गए कि मुझसे दूर जा रहे रंगनाथ स्वामी। तो ब्रह्मा प्रार्थना करने लगे, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हें विरह में दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम हर रोज सुबह आकर मेरी क्या कर सकते हो? पूजा कर सकते हो। तो रोज ब्रह्मा सुबह आकर यहाँ भी उनका पूजन करते हैं और शाम को विभीषण आते हैं। कौन आते हैं? आज भी विभीषण के ये प्राणनाथ है, रंगनाथ स्वामी विभीषण के क्या है? प्राणनाथ, जिनकी वो सेवा निरंतर करते हैं। तो ऐसे जब इक्ष्वाकु ने उनकी पूजा की तो उनके वंश में आगे चलकर ये जो विग्रह है यहाँ आते हैं अयोध्या में, जिनकी सेवा उन राजाओं के परंपरा में दशरथ महाराज के पास आती है और राजा दशरथ क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। तो एक बार राजा दशरथ ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसमें सारे राजाओं को इनवाइट किया था। तो यहाँ कावेरी के तट पर एक राजा थे जिनका नाम था धर्म वर्मा। तो ये राजा को अयोध्या में बुलाया था उस फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो उस राजा ने जब ये श्रीरंगम रंगनाथ के विग्रह को वहां देखा तो उन्होंने सोचा नहीं, मुझे भी इनकी पूजा करनी है, इनकी आराधना करनी है और इनको मैं अपने देश ले जाऊंगा जहां मेरे प्रजाजन भी उनकी सेवा करेंगे। तो यहाँ वो राजा आकर जो चंद्र पुष्करणी है, सुबह हमने विजिट किया, उसके किनारे पर तपस्या करने लगे कि रंगनाथ देव आप यहाँ अवतरित हो जाइए। तो भगवान ने कहा कि मैं यहाँ आकर परमानेंटली निवास करूंगा कावेरी के तट पर, और चंद्र पुष्करणी के तट पर। तो वैसे तीन रंगाज हैं। कितने रंगाज हैं? आदि रंगा, मध्य रंगा, अंत्य रंगा। हाँ, तो बाकी दो रंगा, ये तीनों रंगाज कावेरी के तट पर है। ये जो आदि रंगा है वो श्रीरंग पट्टनम में है, हाँ, बेंगलोर से नजदीक है। और दूसरे एक रंगा है, हाँ, तो वो बीच में है कावेरी के तट पर। और ये तीसरे जो रंगा है जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, इनको अंत्यरंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यरंगा। तो अंत्यरंगा सबसे श्रेष्ठ है जिनका दर्शन आदि। तो जब राजा धर्मवर्मा ने ये इच्छा व्यक्त की, तब तपस्या करने लगे और सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एक समय आएगा कि भगवान स्वयं ही यहाँ आ जाएंगे अपनी इच्छा से। तो जब भगवान राम श्रीलंका जाते हैं और रावण का वध करके विभीषण के साथ, हाँ, पुष्पक विमान में सारी वानर सेना वगैरह बैठकर कहाँ पहुंचती है? अयोध्या। जब ये लोग अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासी बहुत आनंदित हुए और वहां सबने दीप जलाए। तब से क्या शुरू हो गया था? दीपावली। तो सब भरत आदि सब उनका वेट कर रहे थे, आनंद महोत्सव मना रहे थे। जब ये सारे वानर सेना के साथ, विभीषण के साथ, सीता, हाँ, लक्ष्मण आदि राम पहुंचे वहां, तो वहां पहुंचने के बाद भगवान राम को लगा कि इन सब ने इतनी मेरी सेवा की है, हाँ, मुझे उनके प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और कैसे कृतज्ञता व्यक्त करो? कुछ उनको मैं क्या करो? गिफ्ट्स दो, कुछ देकर मैं अपना जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करता हूँ। भाई वैसे देखो भगवान राम की कितनी महानता है कि भगवान राम बंदरों के साथ घूमते हैं। किसके साथ? आपको कहा जाए कि आप बंदरों के, एक बंदर लेके आप जाइए दिल्ली के फरीदाबाद या दिल्ली की सड़कों में, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। लेकिन यहाँ भगवान बंदरों के साथ क्या, किसी के भी साथ घूम सकते हैं यदि वो उनकी सेवा के प्रति समर्पित है। हाँ, तो भगवान बंदरों से सेवा लेते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं कि इनके लिए कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए। तो उससे पहले उनको भोजन कराते हैं। क्या करते हैं? भोजन। तो एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता है जिसमें सारे बंदरों को लाइन में बिठाया जाता है और भगवान राम हनुमान के साथ दूसरे स्थान में होते हैं। तो वह प्रसाद सर्विस हो रहा था, जैसे हम सब बैठे थे लाइन में प्रसाद सर्व हो रहा था। तो जब कुछ सर्व किया, भगवान राम ने कहा चलो हनुमान हम चलते हैं देखने के लिए। जैसे इस्कॉन में भी जब प्रसाद सर्विस होता है बड़े फेस्टिवल में, तो सन्यासी लोग जाते ना देखने कौन कैसे खा रहा है, मिलते वॉक करते। तो वैसे हनुमान के साथ भगवान राम गए, देखने गए कि क्या हो रहा है अंदर। तो वहां नॉर्थ इंडियन प्रसाद बनाया था। कौन सा? तो वहां नॉर्थ इंडिया में थे अयोध्या में, साउथ इंडिया तो हम क्या खा रहे हैं एक हफ्ते से? चावल नहीं, कर्ड राइस, टमेरिंड राइस, टोमेटो राइस, और क्या है, पोंगल। चावल नहीं खा रहे हम तो अमेजिंग साउथ इंडियन प्रसाद है। लेकिन वहां जब नॉर्थ इंडियन प्रसाद बनाया था, साउथ इंडियंस क्या खाते? छोले चावल, खड़ी चावल और राजमा चावल। ये नाम इतने पैशनेट है यहाँ देखो पोंगल, अमेजिंग ना, सतोगुणी है। साउथ इंडिया मोड ऑफ गुडनेस, क्या है? मोड ऑफ गुडनेस। नॉर्थ इंडिया मोड ऑफ पैशन। तो वहां छोले बनाए थे। क्या बनाए थे? अभी बंदरों को क्या पता छोले कैसे खाने हैं। तो अभी देखा कैसे खाने, तो चम्मच दे दिए उनको, एक चम्मच में पकड़ के। एक ने तो शुरुआत किया जो सबसे सीनियर था, हाँ, ऐसे पकड़ा और सोचा कैसे खाओ, तो उसने ऐसे उड़ा दिया ऊपर टेबल से, जंप मार के ऐसे कैच कर रहा था। तो भगवान राम इन सबको देखकर इतने आनंदित हो गए और हंस रहे थे। फिर जब वहां बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो सबको सब कुछ दिया, अलग अलग चीजें। और हम सुनते हैं हनुमान की जब बारी आई, और किसके हाथ से गिफ्ट्स बांटे जा रहे थे? सीता देवी के हाथ से। कौन नहीं सीता महारानी के हाथ से स्वीकार करेगा? लेकिन वह हनुमान को कोई इंटरेस्ट नहीं था। हनुमान के लिए तो सीता देवी ने अपने गले का वो हार पहनाना चाह, देना चाह। वो देखने लगी इसको क्या करूं मैं, हाँ, वो टुकड़े करने लगे दांत से। और फिर वास्तव में जो क्राउड में से किसी ने कहा हनुमान, हाँ, क्या कर रहे हो? उसने कहा इसमें देख रहा हूं कि यहाँ इसमें कौन है, सीता और राम जी है क्या? उन्होंने कहा इतना तुम में घमंड क्या तुम्हारे हृदय में है? कहते हाँ दिखाओ अभी। तुम क्या करते हनुमान? अपना हृदय चीरते हैं और दिखाते हैं। तो वैसे ही भगवान राम देखते हैं, सीता देवी को कहते कि मुझे नहीं नीड इन सब चीजों की, हम मुझे तो वास्तव में भगवान राम की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पहले तो सीता देवी उनको कहती है चिरंजीवी भव, आपकी लंबी आयु हो। हनुमान जी रोने लगे, उन्होंने कहा क्यों मुझे मरवा रही हो, हाँ इतना लंबा आशीर्वाद देकर जीवित रहने का, ये वृक्ष बेचारे हजारों सालों से जीवित है, लंबी आयु होना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, उस लंबी आयु में कृष्ण की सेवा होना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्होंने ये मांगा कि मैं कभी भगवान राम की सेवा को ना भूलो और जहां भगवान राम के नाम रूप गुण लीला का वर्णन हो वहां सदैव मैं खड़ा रहो सुनने के लिए। ये दो बूंद सीता देवी से उन्होंने मांगे थे। और फिर भगवान राम ये देखकर आश्चर्यचकित होते, बस चेयर में बैठे बैठे राम रोने लगे, खड़े हो गए। हनुमान को कहते क्या दो आपको? पहले हनुमान के लिए भगवान ने देखा, आंखें बंद की, पूरे त्रिभुवन को छान मारा। भगवान आईज बंद करे तो कहां ढूंढा, सब त्रिभुवन को ढूंढा, मेरे पास वैल्यूएबल क्या है, क्या गिफ्ट दे सकता हूं? या फिर वैकुंठ जगत, उनका जो धाम है राम का, कौन सा है, साकेत, उस धाम को भी देखा, क्या दे सकता हूं राम को? देखा मेरे पास उनकी सेवा के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने सोचा एक चीज है मेरे पास, वो है अपना आलिंगन, प्रेम भरा आलिंगन मैं हनुमान को दे सकता हूं, इससे बढ़कर मेरे पास देने के लिए नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा देखते हैं ना हनुमान का आलिंगन कौन कर रहे हैं, राम जी। मैं जब छोटा था तो घर में एक फोटो था, आज तक है, मतलब शायद जब से मुझे याद हो, आंखें जब से खुली होगी, फोटोज देखना शुरू किया होगा, तब से घर में एक फोटो देखता था, आज भी हमेशा याद रहता है कि वो ऐसे आलिंगन कर रहा है और बहुत सुंदर फोटो था। तो मैं सोचता था ये क्यों, ये बंदर का आलिंगन क्यों कर रहे हैं? लेकिन मुझे कुछ साल पहले पता चला, हाँ जब भक्तों से सुना या पढ़ा, कि वास्तव में ये महान गिफ्ट भगवान राम के पास थे अपना आलिंगन, इससे बढ़कर उनके पास कुछ नहीं था सेवा के बदले में देने के लिए, इसलिए वो उनको प्रदान करते हैं। तब सबको दे दिया, फिर विभीषण का बारी आया, किसका, हाँ तो भगवान ने सोचा विभीषण को क्या दो, तो फिर विभीषण को देने के लिए भगवान राम जब सोचते हैं तो फिर भगवान राम और विभीषण फिर डिजायर भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि विभीषण ने वहां एक धन को देखा था अयोध्या में, उस धन का नाम है इक्ष्वाकु कुल धनम। क्या नाम है? इक्ष्वाकु कुल धनम। क्या है वो धन? श्री रंगनाथ स्वामी, भगवान रंगनाथ के विग्रह, जो इक्ष्वाकु वंशज के राजागण दशरथ आदि भगवान राम स्वयं इस विग्रह की आराधना करते थे। तो जब विभीषण ने कहा कि मुझे ये विग्रह चाहिए, या भगवान राम ने स्वयं ही उनको ये इक्ष्वाकु कुल धनम श्रीरंग विमानम, भगवान रंगनाथ के जो विग्रह हैं उनको प्रदान किए, और फिर इक्ष्वाकु का ये कुल धन रंगनाथ देव को लेकर विभीषण अपने हाथ में लेकर यहाँ आ गए। उनको कहाँ पहुंचना था? लंका पहुंचना था। बल्कि विभीषण जैसा डिवोटी नहीं है संसार में, जिनके पास सब कुछ प्रतिकूल था, बहुत कठिन एनवायरमेंट था, लेकिन उनके भक्ति में कभी भी रुकावट या बाधा नहीं आए। उन्होंने अपना घर ऐसा बनाया था कि सारे दीवारों में क्या लिखा था उन्होंने, राम 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 राम, क्या लिखा था, जोर से और जोर से। तो एक दिन उनके घर में विजिट करने के लिए रावण प्रभु जी आ गए। कौन से प्रभु जी? वैसे वो सोचो आप इन सबको प्रभु जी कह के पुकारोगे तो कितना अमेजिंग है। रावण आ गए और रावण आके देखा, अरे मेरे शत्रु का नाम मेरे राज्य में, कैसे आपकी हिम्मत है? जैसे कोई घर में अकेला भक्त होता है, पत्नी भक्त नहीं है, भाई भक्त नहीं है, भाभी भक्त नहीं है, मदर फादर नहीं है, ये अकेला बेचारा कोने में बैठकर जप करता है और टेंशन में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। हाँ उसको प्याज लहसुन का भोजन मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ऑफरिंग, ऐसे स्ट्रगल रहता है। तो यहाँ तो बहुत स्ट्रगल था उनको, हाँ विभीषण को। तो एक दिन इनका विजिट करने के लिए रावण आ गए और देखा क्या है, पूरे दीवारों में राम 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 लिखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ मेरे जो शत्रु हैं उसके नाम सब जगह तुमने लिख डाले हैं। उन्होंने कहा भ्राता श्री, क्या कहा भ्राता श्री रावण, ये आपके शत्रु का नाम नहीं है, मेरा तो आपका आपके प्रति इतना प्रेम है हाँ, जो मेरे हृदय में उमड़ उमड़ के जागृत हो जाता है, और विशेष आपके लिए और मेरी जो भावी मंदोदरी के लिए, इसलिए पहले आपका नाम है रा, क्या है रावण का रा, मंदोदरी का। तो इस प्रकार से विभीषण छुट्टी ले लेते हैं और निरंतर गाते हैं
हरे कृष्णा
कृष्णा लाउडली,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो विभीषण हमेशा भगवान राम की सेवा में नियुक्त थे। हम तिरुपिल्लानी जब तिरुपिल्लानी गए थे ना, जाते समय जहाँ आप लोगों ने ड्रामा किया था, वो कौन सा ड्रामा किया था, आदि 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 जगन्नाथ स्वामी का हमने दर्शन किया, जहाँ वो सेतु बनाना हनुमान का टेंपल था, तो वहां वहां एक प्रकार से विभीषण मिलने आते हैं भगवान राम को। तो ऐसे विभीषण जब लेकर आए यहाँ, यहाँ आए और उन्होंने चंद्र पुष्करणी को देखा। पुष्करणी हमेशा याद रखे तालाब को कहते हैं ना, ये स्पेसिफिक शब्द है और जो हमें लर्न करने चाहिए धीरे धीरे, जब हम रेगुलर श्रवण करते हैं रीडिंग करते हैं तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हमें हमेशा हमारे दिमाग में हो जाने चाहिए। तो पुष्करणी को जब देखा तो उनको लगा कि यहाँ मैं दोपहर का पूजन करता हूँ। दोपहर को पहुंचे थे यहाँ विभीषण विग्रह को लेकर, श्रीरंग विमानम को लेकर। तो जब यहाँ पहुंचे तो उनको लगा दोपहर का पूजा करता हूँ, उसको कहते उच्ची काल पूजा। क्या कहते उच्ची काल पूजा, माता जी को पता होगा। तो जब ये पूजन के लिए बैठ गए तो इन्होंने स्नान आदि किया चंद्र पुष्करणी में और विग्रह को वहां रखा श्रीरंग विमानम को। भगवान लेटे हुए हैं द्विभुज, हाँ जैसे सुबह हम सब ने देखा भगवान के उस स्वरूप को। तो फिर उस समय राजा, जो राजा भगवान के इस विग्रह के लिए तपस्या कर रहे थे धर्म वर्मा, उनको पता चला और कई ऋषियों को, तो वो सब लोग यहाँ दौड़ते हुए आए रंगनाथ देव का दर्शन करने के लिए। और दर्शन करके उन्होंने विभीषण को कहा कि यहाँ आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ प्लीज, आप यहाँ भगवान का ब्रह्मोत्सव मनाओ, जो भी सुविधाएं फैसिलिटी जो भी चाहिए धन आदि में प्रोवाइड करूंगा। तो विभीषण मान गए, चलो दो तीन दिन रुकता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे फेस्टिविटीज वगैरह हुए और फिर विभीषण को लगा कि अभी मुझे निकलना चाहिए। तो जैसे वो पुलस्त्य मुनि की हालत हो गई थी, वो गोवर्धन उठा के लेके आए थे, क्या लेके आए थे, हाँ हाँ, तो गोवर्धन लाए थे। तो गोवर्धन ने कहा था मुझे उठा सकते हो, लेकिन एक बार नीचे रख दिया तो फिर से नहीं उठूंगा, नहीं उठा पाओगे। तो वैसे यहाँ उन्होंने रखा और भगवान जानबूझ के उनके द्वारा यहाँ रखवाते हैं दोनों के तट पर। कावेरी भगवान को बहुत प्रिय है रंगनाथ स्वामी को, और दूसरा जो ये चंद्र पुष्करणी है, इनके तट से भगवान रंगनाथ अलग नहीं होना चाहते, यहाँ आकर भगवान निवास करते हैं। और विभीषण पुनः ट्राई करता है उठाने का, लेकिन भगवान उनसे उठे नहीं जाते हैं। भगवान कहते कि मैंने तो वचन दे रखा है धर्म वर्मा को कि यहां मैं निवास करूंगा, यहां से मैं किसी और नहीं जाऊंगा। तो ये जो रंग क्षेत्र है ये हमेशा के लिए शाश्वत है, ये वैकुंठाई है। ऐसे नहीं कि भगवान आए नहीं थे तब नहीं था ये स्थान वैकुंठा, जैसे मथुरा या वृंदावन कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे तो वो स्थान स्पिरिचुअल नहीं था, या इटर्नल गोलोक वृंदावन नहीं था, ऐसे नहीं। जो भगवान का धाम है वो शाश्वत है और भगवान कभी अप्रकट अवस्था में हमें महसूस होते हैं या फिर उनकी लीलाओं को हम प्रकट रूप में सुनते हैं पढ़ते हैं, तो वो स्थान हमेशा उसी प्रकार से बना रहता है। तो फिर भगवान को उठा नहीं पाए तो तब से भगवान यहाँ क्या करते हैं, निवास करने लगते हैं। तो सबसे पहले चंपल धर्म वर्मा ने बनाया था भगवान रंगनाथ के लिए। तो विभीषण को भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, इसलिए अब देखो विभीषण हमेशा वहां है, हाँ डिटेल्स के साथ है। टेम्पल के अंदर जहां हमने एंट्री किया था लाइन शुरू हो गई थी, तो वहां एक बड़ा सा पेंटिंग है विभीषण का। आज भी ये कहा जाता है कि श्री संप्रदाय में भगवान की एक विशेष सेवा होती है और वह विशेष सेवा किसी विशेष डिवोटीज को दी जाती है। जैसे कांचीपुरम में वरद राज की सेवा, जिसको कहते हैं एकांत सेवा। कौन सी सेवा? एकांत सेवा, जो अकेला व्यक्ति भगवान के साथ उनकी सेवा करता है, सीधा अल्टर के अंदर सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं, उनको फैन करना, भगवान के साथ बातें करना वगैरह, भगवान भी उस व्यक्ति से आदान प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से रंगनाथ की जो एकांत सेवा है वो विभीषण के पास है। रोज रात्रि में विभीषण आते हैं और रंगनाथ देव की एकांत सेवा करते हैं, उनकी उनको फैनिंग करना, उनको कुछ चीजें सुनाना। तो ऐसे जब राजा धर्म वर्मा ने यह टेम्पल बनाया था शुरुआत में, तो लंबा समय बीता, कालांतर में ये टेम्पल कावेरी के सैंड के कारण डूब गया। यहाँ इससे मुझे वहां की याद आई, कहाँ के? जगन्नाथपुरी। इंद्रद्युम्न ने भी मंदिर बनवाया था, फिर वो कालांतर में समंदर के सैंड से ढक गया। फिर एक राजा हुए गल माधव, जब अपने घोड़े के ऊपर जा रहे थे तो घोड़ा उस सैंड के बीच में से मंदिर का कलश का थोड़ा सा भाग ऊपर आया था, उसके टक्कर खा के पाँव में गिर पड़ता है। तब वहां एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा होता है, जो बहुत हजारों सालों से, जिनका नाम था काकभुषंडी। क्या नाम था? वो बताते हैं कि ये टेम्पल किसने बनाया। तो उसी प्रकार से यहाँ आगे चलकर एक राजा हुए इन्हीं के वंश में, तो वो राजा जब शिकार करने के लिए यहाँ आए और इस स्थान में एक वृक्ष के नीचे जब बैठे रेस्ट करने के लिए, तो उस वृक्ष के ऊपर एक तोता था और वो तोता इस राजा को देखकर एक श्लोक का उच्चारण कर रहा था। वो तोता कह रहा था, कावेरी विरजाम सेयम वैकुंठम रंग मंदिरम स वासुदेव रंगेश प्रत्यक्ष परमं पदम विमानम प्रणवाकारम वेद क्षमम महाद्भुतम श्री रंगशाही भगवान प्रणवार्थ प्रकाशोगम। उसका मतलब है कावेरी विरजा सेयम, ये जो कावेरी है वो विरजा नदी है और ये रंग मंदिर है ये साक्षात वैकुंठा है और जो रंगनाथ है वो साक्षात वासुदेव कृष्णा है प्रत्यक्ष परमं पदम। तो इस प्रकार से वो बता रहा था कि ये वो स्थान है, इसके नीचे ढके हुए हैं स्वयं भगवान रंगनाथ। हाँ, तो ऐसे जब राजा ने सुना, राजा चला जाता है घर और उसके कान में ये श्लोक घूमते रहता है, आवाज करते रहता है। जब रात्रि में सोया राजा तो उनके स्वप्न में रंगनाथ देव आते हैं और रंगनाथ स्वामी उनको कहते हैं कि आप क्या करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो वो राजा आकर सारे रेत आदि को दूर करता है और फिर से इस स्थान को स्थापित करता है, फिर से टेंपल को रेनोवेट करता है, रिबिल्ड करता है। हाँ, तो उस कव्वे के कारण राजा ने, जहाँ रंगनाथ का अंदर हम दर्शन करते हैं उसके साइड में एक मंडपम है वो बनाया है, उसका नाम है किली मंडप। क्या नाम है? किली मीन्स कौवा, तोता, तोता, किली मीन्स तोता। हाँ, तो जिनके नाम से राजा ने क्या बनाया? किली मंडपम, इस विशेष लीला को स्मरण रखने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान रंगनाथ देव इस स्थान में प्रकट होते हैं और आगे चलकर अलग अलग महान भक्तों से वो सेवा स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? सेवा स्वीकार करते हैं। तो थोड़े देर के लिए हम कीर्तन करते हैं, फिर लेक्चर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
या 5 मिनट ब्रेक दे दो आपको पानी पीने के लिए और थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, ठीक है? तो 5 मिनट में आना है और अपना अपना स्थान याद रखिए, उसी स्थान में बैठिए, नहीं तो फिर अरेंज करने के लिए फिर और समय जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, रंगनाथ स्वामी के।